40वें एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं परमात्मा कहां से आकर अपना ज्ञान देते हैं? उनका नाम क्या है? क्या उनका निवास स्थान भी वही है जो हम सभी आत्माओं का है? परमात्मा के लिए कहा गया है, ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम और ऊंचा ही उसका धाम। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं कि वह ऊंचा स्थान कौन सा।
हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय को लेकर चल रहे हैं, जिसमें पहले परमात्मा ने अपने धाम का ज्ञान दिया है। मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से आता हूँ, परम धाम जिसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित नहीं कर सकता, वो मेरा धाम है। हम मनुष्य आत्माओं को यदि अपने धाम का ज्ञान हो जाए तो जीवन में काफी शांति आ जाएगी। जैसे ही संसार में कोई मनुष्य अपने घर से निकलकर कहीं बाहर गया हो कार्य के लिए, धंधों के लिए या मेले में, और वो ये भूल जाए कि उसका घर कहाँ है। हम सब जानते हैं ऐसा व्यक्ति संसार में भटक जाएगा, उसका चित्त अशांत हो जाएगा, उसको कहीं भी आश्रय अपनापन महसूस नहीं होगा और ये उसकी अशांति का बहुत बड़ा कारण होगा। यही हाल हुआ सभी मनुष्यों के साथ। हम सभी आत्माएं, इस अध्याय में भी कहा है कई जगह, जीव आत्मा जो इस देह की मालिक है, हम सभी आत्माएं जब अपने धाम को छोड़कर इस संसार रूपी रंगमंच पर आए तो हमें ये भूल गया धीरे धीरे कि हम कहां से आए थे, हमारा घर कहां है, इस संसार में अपना खेल पूरा करके हमें कहां वापस जाना है। घर को भूलने से हम इस संसार की मरीचिका में, इस मृग तृष्णा में उलझ गए, भटक गए, अशांत हो गए। हमें जानना चाहिए हमारा मूल वतन, आत्माओं का मूल वतन। हम मूल रूप से आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। हम आत्माओं का रहने का मूल निवास स्थान परम धाम है, शांति धाम है, जो परमात्मा का भी निवास स्थान है। एक छोटी सी और बात आपको स्पष्ट कर दें, परमात्मा ने स्वयं एक श्लोक में 15वें अध्याय में बोला है कि सभी जीवात्माओं में भी जो श्रेष्ठ है वो मैं हूं। आत्माओं में श्रेष्ठ परमात्मा है, परम प्लस आत्मा। आत्माओं में परम अर्थात आत्माएं बहुत हैं और उन सब में जो परम है, श्रेष्ठ है, वो परमात्मा है। वो परे से परे रहने वाला है, इसलिए उसे पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं और परम आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि उसका धाम परम धाम है। तो जो धाम परम आत्मा का है वही धाम आत्माओं का भी है। जब आत्माएं शरीर में हैं तो इस संसार में हैं, प्रकृति के साथ हैं, और जब आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाती है तो उसे मुक्ति धाम में ही जाना है। उसकी उड़ान उधर को ही होती है, परंतु मुक्ति धाम का ज्ञान न होने के कारण हम ऐसा कहें कि जैसे हम अपने घर का रास्ता ही भूल गए। तो आत्मा इस शरीर से निकलने के बाद मुक्ति धाम में नहीं जा पाती, यही पुनर्जन्म के चक्र में, इस आवागमन के चक्र में लगी रहती है। तो उस धाम को जान लेने से हमारा चित्त शांत हो जाएगा। जैसे किसी मनुष्य को अपना घर न हो उसे कैसी फीलिंग रहती है, अपना घर हो जाने पर कैसे उसका चित्त शांत हो जाता है। हमें भी अपने घर का ज्ञान हो जाएगा तो हमारा चित्त शांत हो जाएगा। विविध तरह की जो अशांति, भोग विलास के कारण जो अशांति पैदा हो गई है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। अब छठे श्लोक के बाद इस 15वें अध्याय में कुछ बहुत ही सूक्ष्म चीजों की चर्चा है आत्मा के बारे में। मैं आपको बहुत सरल भाषा में उस गुह्य फिलोसोफी को रख देता हूँ और मुझे विश्वास है आप उसको पूरी तरह समझ लेंगे। आत्मा जब शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है कौन उसे गाइड करता है, कौन ले जाता है। तो कहा है जैसे गंध, कोई भी सुगंध वायु के वेग के साथ दूसरी जगह चली जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर मन सहित कर्मेंद्रियों सहित दूसरे शरीर में स्वतः ही चली जाती है। बहुत अच्छी तरह, बहुत स्पष्ट से इस एक सूक्ष्म बात को जानना है। मन और बुद्धि ये तो आत्मा की ही दोनों शक्तियां हैं। जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन और बुद्धि तो उसके साथ चलती ही हैं। लेकिन मन बुद्धि का संबंध जब शरीर से होता है, ब्रेन से होता है, मस्तिष्क से होता है, तभी मन और बुद्धि कार्य करती हैं। जैसे आत्मा बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकती, वैसे ही मन बुद्धि भी बिना ब्रेन के संपर्क में आए कार्य नहीं करते हैं। तो जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसका सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर में वो सब कुछ होता है जो इस स्थूल शरीर में है। तो सभी कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, मन और बुद्धि, चित्त, सभी के साथ आत्मा एक शरीर छोड़ती है। इतना नहीं, और सूक्ष्म रूप से जरा जान ले, हम सब ने जो कर्म किए हैं, पाप और पुण्य, आम मान्यता है कि मनुष्य के साथ उसके कर्म जाते हैं। अब कर्म हमने कर दिए, कर्म स्थूल रूप से किए जाते हैं, कर्म मोटा स्वरूप है, बाह्य स्वरूप है। जब मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप सूक्ष्म संस्कार आत्मा में समा जाते हैं। बहुत जरा गुह्य बात है। कर्म का सूक्ष्म रूप संस्कार वृत्तियों में समा जाता है, और जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसे ही उसके संकल्प चलते हैं, विचार उठते हैं, और ये विचार आत्मा से चार ओर फैलते हैं, सारे शरीर में भी फैलते हैं, और ये संकल्पों का प्रकाश सारे शरीर में फैलकर एक प्रकाश के शरीर का निर्माण करता है, जिसे सूक्ष्म शरीर, प्रकाशमान काया, एंजेलिक बॉडी कहते हैं, फरिश्तों का शरीर कहते हैं। तो ये शरीर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा ये सभी अंग प्रत्यंग, कर्मेंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां उस शरीर में भी होती हैं। तो आत्मा उस शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से बाहर निकलती है, तो जो कर्म उसने किए हैं उसके अनुसार संस्कार बने, संस्कार के अनुसार संकल्प चले, संकल्प के अनुसार शरीर बना। तो हम ऐसा कहेंगे कि आत्मा सभी कर्मों को सूक्ष्म शरीर के रूप से दूसरे शरीर में ले जाती है। ये शरीर संकल्प से ही बड़ा और छोटा हो सकता है। जब कोई मनुष्य मरता है बड़ी एज में, उसका सूक्ष्म शरीर उसके शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का उस आकार का होता है, और जब वो गर्भ में प्रवेश करेगा तो एक छोटा सा पिंड होता है शरीर, तो संकल्प के साथ उसका रूप छोटा हो जाता है, संकल्प करेंगे और वो छोटा हो जाएगा। तो हम ऐसा कहें आत्मा कर्म और संस्कारों के सहित दूसरे शरीर प्रवेश करती है, और इस सूक्ष्म शरीर का प्रभाव, जो ये वाइब्रेशन से बना हुआ शरीर है जिसमें हमारे सभी कर्म, संस्कार, विकार, अच्छाई बुराई सब भरे होते हैं, उसके संस्कार के प्रभाव से नए शरीर में भी उसका संपूर्ण प्रभाव छा जाता है। उसके अनुसार ही मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके अनुसार ही शरीर का कोई अंग कमजोर रह गया, शरीर में कोई डेफिशिएंसी रह गई, किसी रसायन की कमी हो गई, कोई अंग बहुत शक्तिशाली हो गया या कोई अंग टेढ़ा बांका हो गया, वो उस सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशंस के आधार से बनता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कर्म के आधार से गर्भ में शरीर का निर्माण होता है। कौन आत्मा को ले जाता है, वहाँ कौन गाइड करता है? जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वो तो आम रूप से ये कह देंगे कि भगवान आत्मा को वहाँ भेज देता है, उसको कह देता है वहाँ जाना, लेकिन इसमें परमात्मा का एक्चुअली कोई भी रोल नहीं होता। जिस परिवार में जिस आत्मा को जाना है, वहाँ माँ के गर्भ में उसका पहले से ही शरीर एक पिंड के रूप में तैयार होता रहता है और 4 से 5 मास के बीच आत्मा यहाँ से निकलकर उस शरीर में प्रवेश करेगी। तो 4-5 मास पहले ये व्यक्ति जीवित रहता है, आत्मा अपने शरीर में रहती है, इसका सूक्ष्म संबंध उस शरीर से बना ही रहता है जो गर्भ में उसके लिए तैयार हो रहा है। उसके वाइब्रेशंस गर्भ में इस शरीर को पहुंचते ही रहते हैं और गर्भ में इस शरीर में भी वही समान वाइब्रेशंस निर्मित हो जाते हैं जो उस मनुष्य आत्मा में हैं जिसके लिए शरीर तैयार हो रहा है। बस जैसे ही वो आत्मा वहां से शरीर छोड़ेगी तो सूक्ष्म शरीर सहित ऑटोमेटिकली इस गर्भ में प्रवेश कर लेगी। इसमें किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं, ये वाइब्रेशंस जहाँ समान होते हैं वहाँ आकर्षण होता है और वाइब्रेशंस के आकर्षण में आत्मा स्वतः ही खींच कर वहाँ चल जाती है, क्योंकि तब आत्मा को बांधने वाला जो ये शरीर है, जो इसकी कर्मेंद्रियां हैं, वो नहीं होते, उनसे आत्मा मुक्त हो गई होती। तो हम सभी अब जब शरीर में हैं, तो भगवान ने कहा है कि शरीर के द्वारा आत्मा भोगों का भोग करती है, उनका अनुभव करती है, क्योंकि जब आत्मा शरीर में है तभी वो कोई भोजन खाएगी तो उसे टेस्ट महसूस होगा, पानी पिएगी उसे तृप्ति का अनुभव होगा, वो सुन सकती है कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखेगी, विषय वासनाओं में जाएगी। ये सब बुरी वृत्तियां या अच्छी वृत्तियां देह के साथ ही आत्मा में रहती हैं। जब देह से मुक्त हो जाती है आत्मा तो उसके पास ये सब चीजें नहीं रहती, सूक्ष्म रूप में रह जाती हैं, संस्कार रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में। हम यदि बार बार स्वयं को देह से न्यारा होने का अभ्यास करें, यदि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, यदि हम योग अभ्यास करते रहें, तो योग अग्नि से ये किए हुए पाप कर्म कम होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, जलने लगते हैं और हमारे संस्कार सुंदर होने लगते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जो भूत प्रेत होते हैं उनके शरीर काले काले होते हैं, जो फरिश्ते होते हैं उनके शरीर बिल्कुल सफेद होते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र होते हैं, वो पाप कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो गए होते हैं, इसलिए उनके मन के वाइब्रेशंस संपूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, तो उन वाइब्रेशंस से सफेद शरीर का निर्माण होता है। जो भूत प्रेत आदि हैं, ये क्योंकि पाप आत्माएं होती हैं, इसलिए इनके संस्कार और विचार बिल्कुल मैले, गंदे, अशुद्ध, तामसिक होते हैं, उनसे काले सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। तो हम सभी इन बातों को जानते हुए देह से न्यारे होने का अभ्यास करें, देह में रहते हुए इस फीलिंग में रहें कि मैं आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच रहती हूँ, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। एक अभ्यास ये परमात्मा ने आगे के 12 श्लोकों में अपनी महिमा का वर्णन किया है। लोग सोचते होंगे कि भगवान अपनी महिमा का वर्णन स्वयं क्यों करता है, जो मनुष्य भी अपनी महिमा खुद गाए उसको लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन परमात्मा अपना ज्ञान देने के लिए अपने बारे में संपूर्ण रहस्य स्वयं ही बताते हैं। यदि वो अपने रहस्य स्वयं न बताएं, तो उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जान सकता है। परमात्मा सर्वोपरि है, सब में श्रेष्ठ है, वो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान देता है। अगर वो ज्ञान ही न दे तो उसे कोई ज्ञान का सागर क्यों कहेगा। वो प्रेम का सागर है, हम सब उनकी संतान आत्माएं हैं, वो अपने सभी बच्चों पर प्यार बरसाता है, वो वरदाता है, परम सद्गुरु है, वो हम सभी को वरदान देने आता है, वो सुख दाता है और दुख हरता है, उसकी याद से ही मनुष्य के दुख हरे जाते हैं, आत्मा को श्रेष्ठ अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होने लगता है, हम भगवान के बच्चे बन जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, वो हमारा परम पिता है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके भक्त तो बने रहे बहुत समय हमने भगवान के भक्त बनकर देख लिया, उसे मांगते रहे, दुखी हो गए तो पुकारते रहे, हे प्रभु हमारे दुख दूर करो, कीर्तनों में गाते रहे, तुम दुख हरने वाले हो, तुम सुखदाता हो, तुम विघ्न नष्ट करने वाले हो, तुम परम पवित्र हो। परंतु यदि हम उसके बच्चे बन जाएं, अधिकारी बच्चे बन जाएं, केवल भक्त नहीं, तो उसका सब कुछ हमें सहज ही प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि भक्त बनकर तो बहुत देख लिया, मांग कर भी बहुत देख लिया। भगवान से मांगा हमने, उसने हमें थोड़ा थोड़ा दिया, मांगने वालों को तो हमेशा थोड़ा ही दिया जाता है ना। अब यदि हम उसके बच्चे बन जाएंगे तो जो उसके पास है वो सब हमारा हो जाएगा, उसके सर्व खजानों के हम मालिक बन जाएंगे। तो भगवान स्वयं कहते हैं, मैं सर्व शक्तिवान हूँ, मेरी सब शक्तियाँ तुम्हारे लिए हैं। मेरी शक्तियों का ये अर्थ नहीं कि मैं पहाड़ को चूर चूर कर दूं, मैं सूरज को नष्ट कर दूं, मैं धरती को खंड खंड कर दूं, ऐसा बहुत लोग सोचा करते हैं। परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, मैं सर्व शक्तिवान हूँ, मेरी शक्तियाँ हैं तुम सभी मनुष्य आत्माओं के पाप नाश करने के लिए। यदि तुम मुझसे अपना योग लगाओगे तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि चाहे आत्मा को जानने की बात हो, चाहे परमात्मा को जानना हो, अज्ञानी जन तो बिल्कुल ही दोनों को नहीं जान सकते हैं। जो मनुष्य विषय विकारों में रहते हैं वो भी न आत्मा को जान सकते न परमात्मा को जान सकते। कई लोग सोचते हैं विषय विकार भी तो भगवान ने ही बनाए हैं, फिर हम इनका त्याग क्यों करें, ये सब चीजें भोग के लिए ही तो हैं, फिर क्यों न हम इन्हें भोगें। लेकिन वस्तुओं को हम नहीं भोग रहे हैं, आज तो वस्तुएं मनुष्य को भोग रही हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। हम ये गलत धारणाएं समाप्त कर दें। भगवान ने कहा, जिसने अपना चित्त शुद्ध न किया हो वो मुझे नहीं जान सकते, वो आत्मा को भी नहीं जान सकते। तो हम अब चिंतन करें, संकल्प करें कि हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है। हमने पाप कर्मों के कारण, लोभ के कारण, विषय वासनाओं के कारण अपने चित्त को बहुत अशुद्ध कर दिया है। अशुद्ध चित्त परम पवित्र आत्मा को जान नहीं सकता, अशुद्ध चित्त पतित पावन परमात्मा को जान नहीं सकता। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, हम उनके बच्चे आत्माएं हैं, हम भी तो पवित्र हैं। यदि वो पवित्रता का सागर है और हम बिल्कुल अशुद्ध हो तो हम उनके बच्चे कहलाने के अधिकारी ही कहाँ रह जाएंगे। तो हम परमात्म चिंतन करें तो हमारा जो बहुत सारा निगेटिव चिंतन है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज इस संसार में बहुत सारे लोग वेस्ट थिंकिंग से बहुत परेशान हैं, न चाहते हुए भी वो व्यर्थ सोचते ही रहते हैं। और जब मनुष्य व्यर्थ सोचता है तो उसके चिंतन की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है और ये फास्ट स्पीड उसको बहुत परेशान कर देती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। परमात्मा को जानकर अब हम उसका चिंतन करें, आत्मा का चिंतन करें, तो ये श्रेष्ठ चिंतन हमें परचिंतन से मुक्त करेगा, हमें व्यर्थ चिंतन से मुक्त करेगा। और तब हम अपने विचारों का स्वयं ही सुख ले पाएंगे, अपने जीवन का बहुत अधिक सुख ले पाएंगे। परमात्मा को जानने का तात्पर्य यही।
मनुष्य आत्मा एवं जीव आत्मा में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा ही है, क्योंकि वे ही उस ऊंचे से ऊंचे स्थान पर निवास करते हैं और वहां से आकर हम सभी आत्माओं को अपने घर की अर्थात शांति धाम की स्मृति दिलाते हैं। तो आपने देखा कि जब हमें अपने घर का पता चल जाता है तो हम सभी आत्माएं परम सुख और परम शांति की अनुभूति करने लगती हैं। इसी के साथ हम 40वें एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। अब मुझे अपनी वाणी को विराम देना होगा। हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।